أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان سے جماعت بہت حد تک متعارف ہو چکی ہے کیونکہ بارہا نمازوں میں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں اور بارہا خطبات میں اس مضمون کی طرف توجہ دلا کر رہتا ہوں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے یعنی دعوت اللہ کے مضمون. قرآن کریم کی آیات میں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی طرف سے ان آیات کے مضمون کو خوب کھول کر بیان کر دیں پھر جب دوبارہ ان پر غور کرتے ہیں تو ضرور کوئی نئی چیز انہیں آیات میں سے ایسی ملتی ہے جن کی طرف پہلے توجہ نہیں گئی ہوتی اور جس سے جن سے مزید بنی و انسان کے لیے فائدے کے سامان ہوتے ہیں. ان آیات کے پر بھی میں نے جب بھی غور کیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی بات ان سے نظر ان میں نظر آئی کچھ نیا نقطہ ہاتھ آیا اور اسی لیے آج میں نے دوبارہ اس مضمون کو شیکتے ہوئے ان آیات کا سہارا لیا. قرآن کریم جہاں تبلیغ کا مضمون بیان کرتا ہے وہاں سبق کے مضمون کو ضرور ساتھ باندھتا ہے, کبھی براہ راست کبھی دل واسطہ, لیکن تبلیغ اور سبق کو الگ الگ کر کے انفرادی طور پر ایک دوسرے سے جداگانہ شکل میں پیش نہیں کیا گیا. लेकिन यहां इस मजमून में इस इन आयात में जिस सब्र की तरफ इशारा है वो एक बहुत बड़े चैलेंज के नतीजे में पेश आने वाला सब्र है। आम हालात में जब इंसान किसी को तब्दील करता है तो तबन एक मनफी रद्दअमल सामने आता है और तबलीग सुनने वाला ये समझता है कि मुझे ये बेवजह अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे शिकार करना चाहता है। और शिकार का रद्दअमल हाँ वो हैवानी शिकार हो, परिंदों का हो, चौपायों का हो या इंसानों का, एक ही तरह हुआ करता है। शिकार अव्वल तौर पर शिकारी से भागता है, इसलिए शिकार के साथ सब्र का मजमून खुद ब खुद वाबस्ता हो जाता है। लेकिन यहां एक और बात बयान हुई है, शिकार ऐसे लोगों का जो खुद शिकारी हों, जो दुश्मनी में अपने इंतहा को पहुंचे हों। इस मजमून पर गौर करते हुए जो बातें मेरे सामने हैं मैं आपके साथ तफसील से उन पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। आमतौर पर यह रुझान पाया जाता है कि सिर्फ जो मुअय्यद हो, नरम मिजाज हो और जिसमें शर ना पाया जाता हो, सिर्फ उसी को तब्दील करनी चाहिए। जहां तक तजर्बे का ताल्लुक है ये दुरुस्त है कि वो लोग जिनमें सादत पाई जाती है जो जाहिर तौर पर नरम मिजाज रखते हैं उनमें तब्दील नस्बतन ज्यादा फायदा देती है, लेकिन कोई कायदा कुल्ली ऐसा नहीं बनाया जा सकता। बाद लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयतों में नरमी पाई जाती है और मुदाहनत पाई जाती है। नरमी अखलाक की वजह से नहीं बल्कि मुनाफत की वजह से पाई जाती है। और ऐसे लोगों के साथ जब अहमदियों का तबलीग का वास्ता पड़ता है तो बाद दफा उम्रें गुजार देते हैं, एक इंच भी आगे नहीं आते। और अहमदी भोले भाले बेचारे वो समझते हैं कि बहुत शरीफ आदमी है, बहुत कभी मुखालफत नहीं करता, हमेशा अच्छी बात करता है, मगर अपनी जगह उसी तरह कायम जिस तरह पहले था। और उसके साथ ताल्लुकात में इंसान अपनी उम्र जाया कर देता है। जहां तक इंसानी ताल्लुकात का मामला है हर शख्स से ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तबलीग की नीयत से जब ताल्लुक रखा जाता है तो वो एक मकसद उसके पेश नजर होता है। मकसद यह है कि जिसको तब्दील की जाए वो करीब आए, करीब सर आए, यहां तक के कुलियतन को सदाकत की झोली में आ पड़े। बस ताल्लुक जहां तक आम ताल्लुक है उससे कोई किसी को मना नहीं करता, बल्कि पुराने करीम ने नसीहत फरमाई है कि दुनियादारी के ताल्लुकात में तुम हरेक से ताल्लुकात रखो, लेकिन जहां बामकसद ताल्लुक है वहां मकसद रहनुमाई करेगा कि ये ताल्लुक कितनी देर तक कायम रहना चाहिए। और बेसूद ताल्लुक तो नहीं है, बस जो ताल्लुक तबलीग के लिए से किया रखा जाता है उसमें जरूरी है कि इंसान इस बात पर नजर रखे कि जिससे ताल्लुक रखा जा रहा है वो वक्त को जाया तो नहीं कर रहा, वो करीब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक शख्स अपनी जगह पर अच्छा रहे और इंसान उम्र उसके साथ गवा दे तो उसकी उम्र लाया जाएगी, सिर्फ उसकी नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों की उम्रें लाया जा रही हैं जिनकी तरफ वो तवज्जो दे सकता था। बस एक शिकारी का वक्त जब लाया जाता है तो बहुत से नुकसान आप उसको पहुंच रहे होते हैं, एक ऐसे शिकार के पीछे लगा रहता है जिसको छोड़कर दूसरा शिकार उसके हाथ आ सकता था, मगर ये रूहानी शिकार है। वहां तो यानी दुनिया के शिकार में तो ये होता है कि अगर एक शिकारी एक शिकार के साथ लग जाए तो बाकी परिंदों की इनको गनीमत है, उनकी किस्मत जाग गई, एक बेवकूफ शिकारी गलत सिमत में चला गया। लेकिन वो रूहानी परिंदे जो इब्राहिम के परिंदे हैं वो तो मारे जाते हैं जिंदा करने के लिए। चुनाते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो खुदा से शिकार का तरीका सीखा था तो यही पूछा था कि मुर्दों को कैसे जिंदा कर किया जाता है। उस मोमिन का शिकार, अगर से बातें शिकार की भी हों, बिल्कुल बस नतीजे के लिए किया जाता है। आम दुनिया के शिकारी मारने के लिए शिकार करता है, मोमिन जिंदा करने के लिए शिकार करता है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सिर्फ बयान फरमाई गई कि जब भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं, ये युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदा करें, उस वक्त इस्तजीबू, उनके साथ उनकी आवाज पर लबैक कहा करो। तो जब मैं शिकार की इस्तलाह इस्तेमाल करता हूं तो याद रखें, हमने जिंदा करने के लिए शिकार करना है। बस वो जो शिकार, वो शिकार जो किसी आदमी की गफलत की वजह से जिंदगी से महरूम रह गया और गलत तवज्जो के नतीजे में अदम तवज्जो का शिकार हो गया और इसी हालत में उसकी जान निकल गई, उसका गुनाह भी तो कुछ उसके साथ आएगा। इसलिए मोमिन को अपनी जिंदगी के औकात की बड़ी तफसील से निगरानी करनी होती है। उसके वक्त की कीमत है, उसके वक्त के लम्हे लम्हे का एक हिसाब है और आम वक्त की तरह उसका वक्त नहीं है। उसे अपने हर वक्त के हर हिस्से की कीमत हासिल करनी है या हिसाब चुकाना है। अगर कीमत हासिल नहीं करता तो खुदा के सामने उसे हिसाब देना है। बस जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि शुरफा में से तब्दील होनी चाहिए, नरम लोगों में तब्दील होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ निगरानी बहुत जरूरी है कि उस तबलीग का फायदा है नहीं है, किस हद तक है, और एक हद के बाद फिर अल्लाह ताला के स्कूल किया जाए और इंसान ऐसे शख्स से हाथ खींच ले जो किसी तरह से कबूल नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स भी एक शक्ल है, बाद लोग शदीद मुखालिफ होते हैं और आमतौर पर लोग उन मुखालिफों का शिकार नहीं करते, उससे रुख ही नहीं करते। कुरान करीम की इन आयात ने खसूसियत से उन लोगों का जिक्र फरमाया है, फरमाया इधर कर दी बैनक व बैन अदावत हूं, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ही शिकारी हो, तुम बड़े बड़े खूंखारों का शिकार करने निकले हो, ऐसे लोगों पर हाथ डालने निकले हो जो तुम्हारी जान के दुश्मन, उनका जब बस चले वो तुम्हें हलाक कर दें, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दें, तुम्हारा कुछ भी बाकी न छोड़े, जाओ खुदा का नाम लेकर उन पर हाथ डालो और हम तुम्हें गुर सिखाते हैं कि किस तरह उनको उस पर फतह याब होना। गुर की बात बाद में आती है, लेकिन यहां देखें कि मकसद कितना बुलंद बयान कर दिया मोमिन के लिए। पैदल लग जी बहना था वह बहना उसको दावत हूं, देखो अचानक तुम क्या देखोगे कि वो शख्स जो शदीद दुश्मन है तुम्हारा, कान ना वो वली न था नहीं, वो जान इसार दोस्त में तब्दील हो जाता है। इसमें नसीहत इस बात की है कि जो दीन के बड़े बड़े मुखालिफ और बजाहिर सख्ती से दीन के साथ टकराने वाले लोग हैं, जिनसे तुम्हें बजाहिर कोई खैर की उम्मीद नहीं है, उनका भी रुख किया करो, उनमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे जवाहिर पोशीदा रखे हुए हैं कि जब वो हाथ आएंगे तो बहुत कीमती गलाना हाथ आएगा। बस इस्लाम के आगाज में हम यही हालात देखते हैं कि वो जो जाहिलियत में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, जब वो मुसलमान हुए हैं तो इस्लाम के सबसे बड़े दोस्त बन गए और गैर मामूली तकवीयत उनकी वजह से इस्लाम को हासिल हुई। बस आप अपनी तबलीग में दुश्मनों पर बिहार डालें, क्योंकि आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा'हु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, उन लोगों में से हैं जो मोहम्मद मुस्तफा के साथी होने के दावेदार हैं और आपकी गुलामी को अपना फर्ज समझते हैं। बस वो अंदाज सीखें शिकार के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज थे। इब्राहिमी अंदाज को आगे बढ़ा दिया गया है, इब्राहिम की सुन्नत को मजीद सैकल और चमक कर दिया गया है, मजीद चमकाया गया है। इब्राहिम को तो यह हुक्म था कि परिंदों उन परिंदों को पकड़ो जो तुमसे महफूज हो सकते हैं। और यह तबलीग का पहला दौर है, वो लोग जो शराफत से बात को सुने, जिनके साथ थोड़ा सा प्यार किया जाए तो वो सबन नरमी रखते हों और प्यार का जवाब प्यार से देने वाले हों, ये इब्राहिमी तो युग है। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्कूल जो परिंदे किए गए हैं वो खोखा दुश्मन है, वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि देखें भी आपको। चुनाचे आम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात तब्दीलियां करके दिखाई वो ऐसे ही लोगों में, एक जैसा कि बयान फरमाया गया है, तुम देखोगे कि तुम्हारे खूनखार दुश्मन जान निसार दोस्त बन जाएंगे। आम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पत्थरों को मोम कर दिया, ऐसे पत्थर फाड़े और उनसे जिंदगी के चश्मे बहा दिए कि अंबिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल दिखाई नहीं। एक मौके पर एक सहाबी जिन्होंने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी सोबत में कुछ साल गुजारे थे, उनसे आपके आ हजूर के विसाल के बाद किसी ने सवाल किया कि आप हमें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताएं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आपकी आंखों ने उनको देखा है, जिस प्यार और मोहब्बत से आपको तस्करा कर सकते कर सकता तो आप हमें बताइए कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। ये सुनकर बात जवाब देने के लिए वो सहाबी जार कतार होने लगे, उनकी इच्छी बन गई। पूछने वाले ने ताज्जुब किया कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने तो सिर्फ इतना सा सवाल किया था कि हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया बताइए, आपकी शक्ल कैसी थी, और ये साहब बजाय हुलिया बताने के रोने लगे। जब कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी जज्बात पर काबू पाया तो जवाब ये दिया कि देखो हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मेरी जिंदगी पर दो ही वक्त आए थे, एक वक्त वो था कि मैं दुश्मनी में इतना शदीद था कि नफरत की वजह से मैं उस चेहरे को देख नहीं सकता, ऐसी कराहत आती थी, ऐसा गुस्सा आता था उनके नाम से कि बार बार मौके आए मगर मैं आंख उठाकर नफरत की वजह से नहीं देख सकता। फिर जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का गुलाम बना तो ऐसी काया पलटी कि मोहब्बत ने जोश मारा और मोहब्बत की वजह से मेरी नजर नहीं टिकती थी उस मुंह पर। खुदा की कसम आज मैं मुझसे कोई पूछे कि मोहम्मद मुस्तफा का हुलिया क्या था तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी नजरों ने कभी नफरत से नहीं देखा, कभी मोहब्बत के वसूल से नहीं देखा, और वाकईतन मैं नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तफसीलन क्या था। बस देखें इस आयत करीमा का वो कैसा जिंदा सबूत है, फैजल नजरी बैना का व बैना हु अदावत हूं जानना हूं वली तुन हमीद, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह तुम तबलीग करके देखो, और हम तुम्हें बताते हैं कि दुश्मनों में से तुम्हें हैरत अंगेज तौर पर मोहब्बत करने वाले वजूद मिले, पर दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं करना। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये मौजज़े कितनी दफा हुए हैं, इस कसरत से हुए हैं, तो उनका कोई शुमार नहीं है। सारे अरब की भी तो तकरीबन नफरत में हुई थी अभी। हजरत खालिद बिन वलीद को देखें कैसे सख्त दुश्मन थे। वो एक वाकया जो उहद में उहद से गुजरा है, जो जिसका दुख जब भी पढ़ते हैं तो इंसान के दिल में इस तरह ताड़ा हो जाता है जैसे कल का वाकया, यानी आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होके निढाल होके शहीदों की तरह जमीन पर जा पड़े और आपके ऊपर दूसरी लाशें आ गई। ऐसा तकलीफ दे वाकया है कि जब भी इंसान पढ़े उसकी अजीब गुदास की कैफियत होती है, भीगी आंखों के बगैर यह वाकया पढ़ा ही नहीं जाता। और इस वाकया में सबसे बड़ा नुमाया किरदार खालिद बिन वलीद ने अदा किया था। ये वो जर्नैल था जिसने मौके की नजाकत को समझा, मालूम कर लिया कि मुसलमानों से क्या गलती हुई है, और भागते हुए कुफार के लश्कर को बिल्कुल एकदम पलट दिया, उनका रुख बदल दिया और अपने सवारों के साथ मुसलमानों के अगब से हमला करके वो फतह जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी उसे वक्ती तौर पर एक शिकस्त में बदल दिया। ये वो खालिद है। और जब वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के असीर हुए, जब आपके इश्क का तीर उन पर लगा, ऐसी काया पलटी है कि उसके बाद तमाम जिंदगी हर जहाज में इस शौक से हिस्सा लिया कि काश मैं भी शहीद हूं, लेकिन ये हसरत पूरी ना हो सकी। इस कसरत से आपने इस्लाम के लिए जिहाद किया है और ऐसी शानदार सिफत अला दीजिए कि इस्लाम के जिहाद के नाम के साथ ही खालिद बिन वलीद का नाम अचानक उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन जान दी कैसी हालत में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जानकारी की हालत थी, साथियों से कहा मेरे पेट से कपड़ा तो उठाओ, उन्होंने कपड़ा उठाया, कहा कोई एक इंच दिखाओ कि जहां जख्मों का निशान ना हो, सारा जिस्म मेरा जख्मों से चूर है और दागदार है, जानते हुए जख्म मैंने क्यों खाए, इस शौक में मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर जान दूं, मैं भी शहीदों में शुमार हूं, लेकिन वाय हसरत मेरे मुकद्दर में यह नहीं था और आज बिस्तर पर जान ले रहा हूं। हजल बहना का बहना हुआ दावत कान वली हमीन, ये एक और जिंदा होता जिंदा मिसाल इस शायद की सच्चाई की बन गए कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम परिंदों के शिकारी नहीं है, ये तो शिकारी परिंदों के शिकारी है, खूंखार जानवरों के शिकारी है, और उनकी ऐसी काया पलटते हैं कि हैवानों को इंसान और इंसानों को खुदानुमा इंसान बना देने वाले, खुदानुमा इंसान बना देने वाले, ये मजमून है इस आयत का। बस अगर हम जैसा कि हमारा यकीन है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ गुलाम बल्कि आशिक गुलाम हैं, अगर हम इस खातिर इस दुनिया में कायम किए गए हैं कि मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत को दोबारा जिंदा करें और जिंदा करके सारे आलम में जारी कर दें, तो फिर हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज क्या, हमें इस बात की लौ लग जानी चाहिए, ये धुन लग जानी चाहिए कि अपनी जात में उसको मोहम्मद जी को जिंदा करके दिखाएं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दो तरीक पर है, एक तो हमेशा हमेश के लिए अपने खुदा के साथ वो जिंदा है और उस जिंदगी पर कभी कोई मौत नहीं आ सकती, लेकिन आपकी एक जिंदगी उम्मत मोहम्मदिया में होकर है, जहां कोई मुसलमान रूहानी तौर पर मरता है वहां उस जिंदगी में कमी आ जाती है, जहां कोई मुसलमान रूहानी तौर पर जिंदा होता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और जिंदगी मिलती है, ये वो जिंदगी है जिसका हर गुलाम मोहम्मद से ताल्लुक है, ये वो जिंदगी है जिसका आज जमात अहमदिया के साथ ताल्लुक है। बस हर मैदान में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा को जब भी आप जिंदा करने की तौफीक पाएंगे, आप यकीन रखें कि आपने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान को अपने अंदर जिंदा किया, दाऊद अलैहिस्सलाम की शान को अपने अंदर पूरी तरह जिंदा करें। ये मजमून है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुश्मनों से और दुश्मनों के लीडरों से डरे नहीं बल्कि उन तक पहुंचे और हिकमत और प्यार के साथ उस तरीक पर जिस तरीक पर इस आयत ने आपको तबलीग का गुण सिखाया है उनको भी जरूर का काम पहुंचाए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको खुदा तआला के फज़ल से बाद दफा हैरत अंगेज तौर पर बेशुमार फल अता होते हैं, क्योंकि दुश्मनों में से जो लीडर हैं अगर वो आए तो अक्सर वो अकेले नहीं आते बल्कि उनके साथ कौम की कौम आया करती है। बाद मुल्कों से तबलीग की रिपोर्टें आती हैं उनमें ऐसे वाकयात कसरत से मिलते हैं कि फलां इलाके में अहमदियत को कोई नाम नहीं सुनना चाहता था, वहां के जो सबसे बड़ा दुश्मन था उस तक पहुंचे और जब बातें की तो ये मालूम करके हैरान रह गए कि उसके अंदर साजिश पाई जाती। कुछ देर में उसने अपने रवैये को तब्दील किया, फिर उसने दिलचस्पी लेनी शुरू की, फिर वो खुदा के फज़ल से अहमदी हुआ और उसके नतीजे में गांव गांव में अब अहमदियत फैलनी शुरू हो गई। ऐसी एक रिपोर्ट इंडोनेशिया से मिली अभी कुछ अर्सा हुआ कि वो साहब जो एक इलाके के पीर के इलाके से बड़े मौजूद काफी वसी तौर पर लोगों पर असर रखने वाले, वो पहले अहमदियत के दुश्मनी में अव्वल अजम थे, जब वो अहमदी हुए तो उनका मशगला ही ये बन गया है, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वहां ऐलान करते हैं कि देखो तुमने मुझे कैसा पाया। वो जब उनको बताते हैं कि हां तुम हमारे पीर थे और पीर हो, तो कहते हैं मैं तो अब किसी और का मरीज बन चुका हूं, मैं तो पीर नहीं रहा, अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फिर बात दफा वो गांव वाले जिसमें शराफत है वो कहते हैं तुम हमारे अब भी पीर हो, जिसे तुमने कदम रखा है वहीं हमारा कदम पड़ेगा। और अल्लाह के फजल के साथ उस इलाके में जहां पहले अहमदियत का निशान भी नहीं था वहां कसरत से जमातें बननी शुरू हो गई। ये एक मुल्क की बात नहीं है, हर मुल्क पर यह बात इसी तरह साबित आती है। यहां भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं या दूसरी उम्र के लोग हैं जिनके अंदर लीडरी की सिफात पाई जाती है, ऐसे हैं जिनके अंदर लीडरी की सिफात के साथ इस्लाम दुश्मनी भी पाई जाती है और वो नुमाया तौर पर इस्लाम की मुखालफत में या हक की मुखालफत में जिस रंग में भी वो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए। और इसको ये पहुंचने के बहुत से जराए हैं। फ्रांस को जब मैं पेश नजर रखकर बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि यहां जमात बहुत छोटी है और अभी तक फ्रांसीसी फॉर्म के साथ इनका गहरा रब्ता नहीं हो सका। नतीजतन फ्रांस में आज तक जितनी भी तबलीग हुई है अक्सर बेशतर वो गैर फ्रांसीसी हुई है, मतलब यहां मोरक्को से आने वाले लोग हैं, यहां अफ्रीका के मुख्य ममालिक से आगे बसने वाले लोग हैं, यहां पाकिस्तानी हैं, जहां तक तब्दील हुई है आमतौर पर इन लोगों में हुई है। और फ्रांसीसी की जब बात करते हैं तो कहते हैं वो दुनिया परस्त है, वो दुनियादार है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है दीन में, जब बात करते हैं तो वो कोरा सा जवाब दे देता है। मैं आपको बताता हूं कि हर कौम में खुदा तआला ने नेक फितरत लोग रखे हुए हैं और दुश्मनों की दुश्मनी के भेस में भी आपको बड़े नेक फितरत लोग मिलेंगे। जो शदीद मुखालिफ दिखाई देते हैं वो जब नरम पड़ते हैं तो उनके अंदर एक हैरत अंगेज इंकलाब बर्पा हो जाया करता है। बस आपकी हिम्मत अगर टूट जाए तो फ्रांस की हिम्मत टूट जाए, आपके सपोर्ट कौम की किस्मत दी गई है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब दाइन अल्लाह हिम्मत हार देता है तो दरहकीकत उस सारी कौम की हिम्मत टूटती है। नसीहत करना बड़ा मुश्किल काम है, नसीहत करने के लिए गैर मामूली ताकतों की जरूरत है, इसीलिए कुरान करीम ने सब्र की तरफीन फरमाई। और ये वो दूसरा पहलू है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। फरमाया फैजल्ली बैना का वैना हुआ दावत हूं कान हूं वली नमीन व मायुल्ला सबर वायुल्ला नदी। लेकिन याद रखो ये बोलने ही रूनुमा नहीं हो जाया करते, दुश्मनों को दोस्त बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए सब्र की जरूरत है। वह मायुल्लाजी ने सबर हूं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी जरूरत है, क्योंकि सारा खिताब वाहिद में है और इसमें अव्वल मुखातब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और आपको जो सबर अता हुआ था वो लफ्ज सबर के ताबे पूरी तरह बयान नहीं हो सकता। इसलिए जहां आम मोमिनों का सबर का सबर का जिक्र फरमाकर के कहा वह मायू रखी सबर हूं जमा के जिले में वमां लक्का इल्ला रू हल्के नदीम, जहां वाहिद की बात की है। फिर अब जमा का जिक्र छोड़ दिया है, जिस तरह पहले का करके तू 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 करके मुखातब किया जा रहा है, मोमिनों का अमूमी जिक्र करते ही खुदा फिर वापस उस मुजमन पर पड़ता है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलिक फरमाता है वमां लक्का इल्ला रू हल्के नदीम, इस अजीम मकसद को एक अजीम अखलाक का तो हिस्सा दिए गए इंसान के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। वो लोग जो सब्र करते हैं उनको भी मिलेगा,
लेकिन असल कामयाबी जो गैर मामूली और एजाजी कामयाबी वो उसको मिलेगी जिससे जिसे हजी अजीम अता हुआ है। हज कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को, और बहुत अजीम टुकड़ा मिला है। किस चीज का टुकड़ा, यह बयान नहीं फरमाया। सब्र की बात हो रही है इसलिए कह रहे हैं दिमाग सब्र की तरफ जाता है, और इस पहलू से जब हम आज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो बिला शुबा इससे बड़ा साबिर इंसान कभी दुनिया में पैदा नहीं। हर मैदान में सब्र की हर आजमाइश में अब इस शान से पूरे उतरे हैं कि उसकी कोई मिसाल कहीं दिखाई नहीं देती। जाती नुकसान की कैफियत देख लीजिए, मुख्तलिफ नौयतों के जाती नुकसान की कैफियत देख लीजिए, अपने अजीजों और प्यारों के दुख बर्दाश्त करने की कैफियत को देख लीजिए। सब्र के जितने भी इम्तिहान आ सकते हैं वो सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ जिंदगी के हिस्सों में मुख्तलिफ शक्लों में आए, और हैरत अंगेज तौर पर आपने हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करना, ऐसी जो चार सूरज की तरह रोशन कामयाबी थी। अव्वल जिंदगी में आपका आपके वालिद का विसाल बाद रवायात के मुताबिक आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था, यानी पैदा ही यतीम हुए और छोटी उम्र थी कि वालदा का वो मिसाल हो गया। बिल्कुल वालिद और वालदा के बगैर बचपन में आपको दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी बसर करना पड़ी, और इस सबक के साथ जो शान के साथ आपने ये दौर गुजारा है कि उसमें एक जर्रा भी एहसास कमतरी को दाखिल नहीं होने दिया। आमतौर पर लोग सबक के इम्तिहान के वक्त मनफी सिफात देखते हैं, लेकिन जहां तक मैंने इंसानी फितरत पर गौर किया है, यतामा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान एहसास कमतरी का इम्तिहान होता है। वो यतीम जो सब्र ना कर सके वो लाजमन एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और एहसास कमतरी फिर बहुत से भयानक किरदार पर मुमताज होता है। अक्सर दुनिया में टेढ़े दिमाग, खतरनाक सोचे सोचने वाले, गलत फलसफे दुनिया को देने वाले, अगर आप उनकी जिंदगी का जायजा लें तो किसी न किसी जिंदगी के दौर में एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यसीरी और यतीमी का दौर इस शान के साथ इन कैफियतों से मुतसर हुए बगैर गुजारा है कि आपके सुपुर्द दुनिया का अजीम तरीन काम किया गया है, यानी नबियों में से भी आपके सुपुर्द जो काम हुआ है वो और किसी नबी को ना सिर्फ एक में दिया नहीं गया बल्कि उसका एक मामूली हिस्सा भी नहीं दिया गया। सारे आलम को खुदा ताला की चौखट पर ला डालना, एक ऐसे शख्स के सपुर्द किया गया जिसके ना बाप था ना मां थी, लोगों के रहम करम पर बलता रहा, और जिसने जब दावा किया तो सारी अपनी कौम कुल्लियत उसकी दुश्मन। ये हज़े अज़ीम की बात हो रही है। सबक का हिस्सा मिला तो इतना बड़ा कि उसकी कोई मिसाल नहीं दुनिया में दिखाई दे रही। फिर आपके बेटे हुए, कहते हैं 11 बेटे पैदा हुए और 11 की 11 छोटी उम्र में फौत हो गए, बहुत बचपन में या चंद सांसों के बाद या चंद सालों के बाद, और हर बच्चे की पैदाइश पर दुश्मन हंसता था और मजाक उड़ाता था और आपके मुतल्लिक तरह तरह की बातें करता था कि देखो ये तो लावल मरा जाता है और दुनिया की बादशाही के दावे करता है। मुझे याद है हजरत खलीफा हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जब ये जिक्र हम पढ़ते थे कि बशीर अव्वल फौत हुआ तो किस तरह दुश्मन ने बगलें तो बजाई और किस तरह सहाबा के दिल खून हुए, और बाद वाकयात जब सहाबा के पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि शदीद तकलीफ की हालत में थे, लेकिन हजरत मुसीम अलैहिस्सलाम पर कोई असर नहीं था। आप जानते थे कि खुदा का वादा जरूर पूरा होगा, ये बच्चा फौत हो गया है तो कोई और मुकद्दर वाला बच्चा बाद में आता होगा, लेकिन जो सहाबा थे वो जानते हैं कि उनके दिल की क्या कैफियत थी, इस वाक्य को देखकर जब मेरा जेन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है तो सारी रूह निकल कर आपके लिए दुरूद बन जाती है। कितनी अजीम आजमाइश थी, अब तक कहने वाले चारों तरफ फैले पड़े थे।
हर बच्चे की वफात के बाद अब तक अब तक नारे उठते हैं।
तभी तो कुरान करीम ने यह जिक्र महफूज फरमाया है कि इन्ना शानिया का होगा अब तक, ऐ मोहम्मद तू देखेगा कि तेरे दुश्मन अब तक रह जाएंगे और इनकी औलादें तेरी औलादें बन जाएंगे। लेकिन जहां तक उस वक्त की दुनिया का ताल्लुक है, उनको तो इन बातों की समझ नहीं थी। ये रूहानी तौर पर ये सारी की सारी कौम मुस्तफा के बंदों में लाके डाल दी जाने वाली थी। वो तो ये देखते थे कि एक बेटा फौत हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, और हर दफा मजीब लाख उड़ाकर इसे अपनी दानिश में जलील और रुसवा कर देते हैं। और ना मोहम्मद कुछ कर सकता है, ना मोहम्मद का खुदा कुछ कर सकता है। ये ताना देखें हर पैदाइश और हर मौत के बाद कितनी शिद्दत के साथ आपके दिल को चीखता होगा। लेकिन आप सब्र और अज़्म का एक बहार थे। एक मौके पर एक रवायत आती है कि एक औरत का बेटा फौत हो गया और वो शदीद तकलीफ की हालत में उसकी कब्र पर खड़ी गिरजाउदारी कर रही थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरे और फरमाया दीदी सब्र करो। उस बिचारी को पता नहीं था कि ये कहने वाला कौन है। उसने कहा कि सब्र, अपना बेटा फौत हो तो फिर पता चलता है कि सब्र क्या होता है। आराम से पास से गुजरते हुए कह दिया सब्र करो। सब्र कोई आसान बात नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, बीबी मेरे 11 बच्चे पैदा हुए और 11 फौत हो गए, और ये कहकर आगे चल पड़े। किसी ने कहा नादान बेवकूफ बुढ़िया, तूने क्या बात की है, ये तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौड़ी दौड़ी पीछे गई, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सब्र कर सकता। आपने फरमाया सब्र का एक वक्त हुआ करता है, वो वक्त गुजर चुका है। वक्त तो हरेक को सब्र दे ही देता है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जब ये फरमाया कि वो सब्र करने वाले हैं तो सब्र कह के नहीं फरमाया, आम मुसलमानों के जिक्र में फरमाया वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरु। इस अजीम मकसद को सब्र करने वालों के सिवा कोई नहीं पा सकता। और फिर देखें हमारे आका और मौला को किस तरह जुदा करके मुमताज करके उनका जिक्र इस आयत में फरमाया, इस आयत के हिस्से में फरमाया वमा युलक्काहा नजीम। इस अजीम मकसद को हकीकत में पाने वाला तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसे सब्र में से हज़्ज़े अजीम अता किया गया है। और हज़्ज़े अजीम को चूंकि पूरी तरह किसी एक मज़मून से बांधा नहीं गया, इसलिए हज़्ज़े अजीम में वो पिछला सारा मज़मून आ गया है जो इस आयत के शुरू में। और इस पहलू से हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ना सिर्फ सब्र सीखना होगा बल्कि हज़्ज़े अज़ीम में से कुछ ना कुछ हिस्सा तो पाना होगा। और वो ये है, उसका पहला ये है ममन आफनो कौल मिम्मन दुआ इल्ला, ज़ाहिर अल्लाह बनोगे तो तुम्हारी बात अच्छी होगी, वरना सारी बातें बेकार और बेमानी हैं। सारी उम्र बातें करते गुजार दोगे उनमें हुस्न पैदा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हो तो तुम्हारा कॉल बहुत ही अजीम है, बात करनी है तो ये करो, वो हमें लगवा लेगा। मगर खाली अल्लाह की तरफ नहीं बुला, नेक अमाल करके दिखाओ, बताओ कि जिसकी तरफ बुलाने आए हो उसके साथ ताल्लुक है। अल्लाह के साथ ताल्लुक हो तो तुम्हारे अमाल में पाक तब्दीली होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कशिश होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर रोज बरोज तब्दीलियां रुनुमा होती रहनी चाहिए, क्योंकि खुदा ताला नाम उतना ही है और उससे ताल्लुक वाला कभी एक मुकाम पर नहीं रहा करता। उसकी जिंदगी मुसलसल एक सफर है जो खुदा की तरफ, और कभी भी किसी हालत में भी आप ये नहीं कह सकते कि इसने अपना सफर मुकम्मल कर लिया। बस ये मजमून है जो इस आयत करीमा में बयान हुआ, जिसके मुतालिक बाद में शहादत दी हसनवरी। इस मजमून को अपने दर्जे कमाल तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया और आपने हर उस सिफत से बड़ा हिस्सा पाया है जो सिफत इस आयत करीमा में बयान हो रही है, जो सिफात इस आयत करीमा में बयान हो रही है। फिर फरमाया इसका विकृति ये आसन, जो चीज अच्छी है उसके साथ बुरी चीजों का दिफा करो, यानी जब भी तुम्हारे से बुराई से कोई पेश आए उसके बदले में नरमी से पेश आओ और नेकी की बात करो। तबलीग में रोजमर्रा इंसान को ये इस चीज से वास्ता पड़ता है, और रोजमर्रा इंसान ऐसे दुश्मनों की बातें सुनता है जिसको प्यार और मोहब्बत से सजाई कर बुलाया जा रहा है, लेकिन वो आगे से बेहूदा बात करते हैं, सख्त कलामी से पेश आते हैं, तमस्कर से पेश आते हैं, और जहां जहां मुमकिन हो वहां फिर वो जबर तशद्दुद से भी पेश आते हैं, कतल के भी दरपाए हो जाते हैं। इस किस्म के मद्दे मुकाबल से हर इंसान को जो दावत अल्लाह करने वाला है जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में वास्ता पड़ता ही रहता है। फरमाया याद रखो इसफा विद्यति है आसन ही सही है, तो इसफा विद्यति है आसन, आसन बात से दिफा करना है। और यहां सही है का लफ्ज नहीं, लेकिन दूसरी आयात करीमा में सही है का जिक्र है, और जहां बात बातें अमदन छोड़ी गई हैं उससे मजमून में गुस्सा पैदा होती है। जब भी तबलीग करने निकलो अच्छी बात तलाश करो, दलायत में से भी बेहतरीन चुनो, तर्क भी वो अख्तियार करो जो सबसे अच्छी नजर आए, जिसमें कशिश पाई जाए, और जब बुराई देखो तो उसे हुस्न के जरिए दूर करने की कोशिश करो। ये सिफात अगर तुम में आ जाए तो फिर तुम दुश्मन को दोस्त में बदल सकते, बदलने की अहमियत हासिल कर लो। और फरमाया जो मोमिन सबर करते हैं उन्हें जरूर ये सिफात मिलती है और उनके मकासद पूरे होते हैं। लेकिन खैर सबसे ज्यादा शानदार किस्सा इन तमाम खूबियों में से अगर किसी को मिला है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो दू हज़िन अजीम थे। बदी का जवाब दूसरे से देने में मौजूद कलाम के लिए बेहतरीन इंतखाब करने के लिहाज से आपसे बेहतर कभी दुनिया में पैदा नहीं। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसाए आप पढ़ें अहादीस में, आपकी दर्ज बयान को देखें, दिल अशश कर उठता है। 1400 साल के ऊपर गुजर गए कि वो बातें कही गई थी, मगर आज भी जिंदा है वो सादा सा कलाम, ऐसी अजीब चमक और ऐसी शान रखता है कि आंखों को झुलझा देने वाला है, ऐसा जज्ब रखता है कि दिल बेसाख्ता उसकी तरफ खिंचा खींचा चलाता है। बस ये नसीहत हो रही है कि जब तुम तबलीग के मैदान में निकलो सब्र करो, सब्र के बगैर तो गुजारा होना ही नहीं, मगर उससे आगे कदम बढ़ाओ और उसकी पैरवी करो जिसे हज़रत अज़ीम बता हुआ था, जिसको हो तबलीग की हर शाम पूरी 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 अपने अरूज के साथ अदा की गई थी। बस आमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर अगर चलना है तो पहली बात ये याद रखें कि छोटे बड़े हर किस्म के शख्स से तब्दीली रब्ता रखना है, खा वो बज़ाहिर नरम मिजाज का हो या सख्त मिजाज का, बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो उस तक भी बात पहुंचानी जरूरी है और बगैर खौफ के उसे बात पहुंचानी है। ये बात याद रखते हुए बात पहुंचानी है कि आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े से बड़े दुश्मन तक भी हक बात पहुंचाते थे और बेखौफ होकर पहुंचाते थे। एक मौके पर अबू जहल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआनदीन में चोटी का मुआनिद मशहूर है, जब भी हज़रत की दुश्मनी की बात करते हैं तो अबू जहल का नाम सबसे पहले ज़हन में उभरता है, और दुनिया इस्लाम में किसी और दुश्मन का नाम मारूफ हो या ना हो लेकिन मशरिक से रब मगरिब तक इस्लामी दुनिया में एक नाम दुश्मन का ऐसा है जो हर मुसलमान को मालूम है, वो अबू जहल का नाम। ऐसा शदीद मुआनिद, लेकिन एक मरतबा एक शख्स फरियाद लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
और अर्ज किया कि यार सुन ला अबू जहल ने मेरा कुछ कर देना है और वो देता नहीं, आपने हिलतुल सुलूल किया हुआ है, आपने एक जमाने में यह कसम खाई थी कि जब भी किसी गरीब और बेकस की मदद की जरूरत होगी आप आगे आएंगे, मैं उस बिल्कुल बुजुर्ग का हवाला देता हूं, आइए मेरी मदद करें। एक लफ्ज कहे बगैर, जरा से तरद्दुद के बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उस सिर्फ रवाना हुए जहां अबू जहल के मुताबिक बयान था, ध्यान किया जाता था कि वो बैठा हुआ होगा, मजलिस से लगाया करता रहे कहीं बस आप उसी उन्हीं मजालिस की तरफ चल पड़े और जाकर अबू जहल को सीधा मुखातिब करके कहा कि ए फलां ये साहब ये शख्स है इसके तूने इतने पैसे देने हैं, बहुत लंबा अर्सा हो गया टाल टोल करते हुए, अब इसे अदा करो। और उसने बगैर इतराज के बगैर तरद्दुद बगैर बहाने के उसी बात उस रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी किए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए तो उसके साथियों ने उससे शर्मिंदा किया, उसे जलील किया कि तुम कैसे दुश्मन हो, हमें तो इस शख्स की मुखालफत में इस तरह ऐसे भड़काते हो कि आग लगा देते हो, और आज वो आया है और उसने तुमसे एक बात की है, मजाल नहीं की तुम्हारी कि उसका इनकार कर सको, और वहीं ताबे फरमान की तरह उसकी बात पर अमल कर दी। अबू जहल ने कहा तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है, आम हालात होते तो मैं वही सुलूक करता इस शख्स से जैसे मैं हमेशा करता हूं, मगर जब ये मुझे कह रहा था कि इस शख्स का हक अदा करो और मेरे दिल में एक बगावत के जज्बात उठ रहे, उस वक्त मैं देख रहा था कि इसके पीछे जैसे दो मस्त ऊंट हों और मुझ पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं, उनकी मुंह से झागे बह रही हैं, अगर मैं इनकार करता तो मुझे नजर आ रहा था कि ये ऊंट मुझ पर गिर पड़े। ये क्या वाकया हुआ है, ये खुदा ताला की तरफ से जो तईफ का वादा है और अपने गुलामों के हक में जब वो निशान दिखा जो वो निशान दिखाता है उनकी एक मिसाल है। दुश्मन भी ऐसा जैसा बुझा, लेकिन आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुदा की खातिर अपने इफाए अहद की खातिर हर किस्म के जिस्मानी जानी और जिस्मानी खतरे को बलायताक रखते हुए उसकी तरफ चल पड़े थे। अल्लाह ने उसकी ऐसी कदर फरमाई कि कश्मन अबू जहल को दो ऊंट दिखाए जो मस्त ऊंट थे और जैसे हमले के लिए तैयार बैठे। ये जो कैफियत है इससे पता चलता है कि कश्म और इल्हाम भी मुख्तलिफ नौजियत की हुआ करते हैं, बाद कशूफ मुखालिफाना कशूफ होते हैं और बाद कशूफ मुआफिफाना कशूफ होते हैं। नेक और बद की तमीज कश्मों की और इल्हामों की कैफियात से भी पता चलती है। बस अबू जहल का जो ये कश्म है ये उसके मुखालिफ कश्म था, उसकी ताइफ में कश्म नहीं था और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ में कश्म था, लेकिन दिखाया उसको गया। लेकिन ये बात इस वक्त उस वक्त जाहिर हुई जब खुदा की खातिर एक बंदे ने हर किस्म की कुर्बानी का फैसला कर लिया और बजाहिर अपनी हलाकत के समान अपने हाथों से की। एक दुश्मन के मुंह में चले जाना जैसे शेर की गार में इंसान दाखिल हो जाए ऐसी बात थी, और बगैर किसी और साथी को लिए बगैर किसी मुहाफिज को लिए उसका चल पड़ते हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने आपके जल्दी की कदर करवाई इसलिए आपको बचाया। बस ये है वो हिस्सा, अजीम हिस्सा जो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कुल्क में अदा हुआ है और आपको भी हर कुल्क में से कुछ ना कुछ हुज़ूर से हिस्सा लेना होगा। हुज़ूर ने तो हर कुल्क में से हिस्सा अजीम ले लिया है, लेकिन जो हिस्से छोड़े हैं पीछे वो भी इतने हैं कि सारे मुसलमानों में तकसीम हो जाए तभी खत्म ना हो, और जो हिस्से अपनाए हैं असल में तो वही हिस्से हैं जो अपनाने वाले हैं, खुद के अजीम में से जो हिस्से आपने अपनाए हैं उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैंने अभी ये बात की है कि जो हिस्से छोड़े हैं वही मुसलमानों में तकसीम हो जाए तो खत्म ना होंगे।
ये फिक्रा ऐसा है जो अक्सर लोगों को सुनते ही समझ नहीं आएगा, इसलिए कुछ वजाहत करनी पड़ेगी। आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है, आप मकारिमुल अखलाक पर फायद किए गए। अखलाक की बहुत सी किस्में हैं, कुछ छोटी छोटी किस्में हैं, कुछ बहुत ही आला दर्जे की किस्में हैं। बस आज हजरत के मुतालिक जब यह फरमाया कि हिस्सा लिया है, तो शेष शुबा पढ़ सकता है कि बाल अखलाक छोड़ दिए हैं, बाल दे दिए हैं, इसकी वजाहत जरूरी है। ये हरगिज मुराद नहीं है, मुराद यह है कि सच में से वो हिस्सा लिया जो सबसे ज्यादा आला दर्जे का हिस्सा था और सबसे ज्यादा मुश्किल था उसका अख्तियार करना। हया में से वो हिस्सा लिया जो सबसे ज्यादा आला पाएगा था और जिसे अख्तियार करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। इशार में से वो हिस्सा लिया जो इससे पहले किसी और को नसीब नहीं हुआ था। सब्र में से वो हिस्सा लिया जिसकी कोई और मिसाल दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो हज़रत अज़ीम कहकर ये नहीं फरमाया कि बाद अखलाक में आप पीछे रह गए, कुछ इख्तियार कर लिए और कुछ छोड़ दिए। हज़रत अज़ीम में अज़ीम का लफ्ज बता रहा है कि सबसे बाला सबसे शानदार अखलाक को आपने अपना लिया और जो छोड़ दिए हैं वो आम लोगों के अखलाक संवारने के लिए भी काफी हैं। वो ऐसे अखलाक हैं कि जिस ये आमतौर पर दुनिया में कोई अख्तियार करे तो वो ही दुनिया में बहुत ही खलीक और आला अखलाक के इंसान के तौर पर शोहरत पा जाए। बस जब मैंने कहा कि बाकी अखलाक भी अगर मुसलमान अपना लें तो इल्ल लजीना सबरू हुए तो वो भी दाखिल हो जाए, मगर हमारे स्कूल जो काम है वो बहुत अजीम है, इसलिए हमें आम अखलाक से बढ़कर वो हिस्सा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने लिए चुना है उसमें से भी कुछ आपसे मांगना चाहिए और उसमें से भी कुछ अपने लिए अख्तियार करना चाहिए। ये वो मजमून है जिसे अगर आप अच्छी तरह समझ जाएं तो आपकी दावत अल्लाह का काम मुश्किल होने की बजाय नाम हो जाएगा, मुसीबत बनने की बजाय एक राहत में तब्दील हो जाएगा। सारी जिंदगी आप इस काम में लगे रहें, कभी आप नहीं थकेंगे, क्योंकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक इस काम से नहीं थके। आपको उस तकलीफ में राहत मिलेगी जो इस राह में आप उठाते हैं, क्योंकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तकलीफ में राहत मिला करती थी जो आप इस राह में उठाते थे। बस हज़रत अज़ीम की तरफ तवज्जो करें और काम इतना बड़ा है और इतना मुश्किल है कि इसके बगैर ये मुश्किल हमारे लिए आसान नहीं होगी। अब तक जो मैं देख रहा हूं बहुत ही कम हैं जिन्होंने पूरी सजीदगी के साथ इस तरफ तवज्जो की है, और जमातों में से भारी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो जज्बा तो रखते हैं लेकिन ना उनको उनके निजाम ने बाकायदा बच्चे की तरह तरबियत करते हुए अपनाया और उनको तरीका सिखाया कि कैसे तब्दील करनी है, ना उनको उनमें ये इस्तेदाद है कि आज खुद वो कर सके। पर बहुत से इंसानी दावीदारियल्ला ऐसे हैं जो बन सकते थे लेकिन नहीं बन सके। इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह आइंदा खुतबे में उमरा को नसीहत करूंगा। इंफरादी तौर पर नसीहतें हैं जो हर जमात के फर्ज से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नसीहत सुनते हैं, नसीहत पर अमल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, उनके लिए मुरब्बी की जरूरत होती है और उन मुरब्बियों के लिए फिर एक बाकायदा निजाम की जरूरत है। बाकायदा निजाम के ताबे ऐसे मुरब्बी जरूरतमंदों तक पहुंचें, उनकी तरबियत करें, उनके उनको अदना से आला मकाम तक पहुंचाएं। बस दोनों तरफ हमें बाकायदा निगरानी करनी होगी। कितने अहमदी हैं जो असरात कुतुबात के असर से वाकयातन दाई अल्लाह बन गए हैं, कितने हैं जिनके अंदर तमन्नाएं पैदा होनी हैं लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडी पड़ जाती हैं, कितनी जमातें हैं जहां तबलीग के नतीजे में नुमाया तौर पर कसरत से लोग मुसलमान होना शुरू हो गए हैं, कितने हैं कितनी हैं जहां शायद तब्दील हो रही है लेकिन असर कोई नहीं हो रहा। अगर आप तकसीम करना शुरू करें जमातों के हालात को कैटेगरीज के तौर पर तो आपको बहुत से ऐसे ग्रुप मिलेंगे
دین کی طرف باقاعدہ نظام جماعت کو توجہ کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ گروزائیں ہو جائیں گے. ان کے اندر ذاتی طور پر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو عمل میں ڈھال سکے. بس بہت سے کام ہیں جو نظام جماعت کو ادا کرنے ہیں, بہت سے کام ہیں جو ہیں انفرادی, لیکن امیر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے کہ کتنے افراد ان انفرادی پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ کہہ کر غافل ہو جاتا ہے تو اس نے اپنی عمارت کا حق ادا نہیں کیا, کیونکہ اس کے لیے بھی صبر کا مضمون ہے. اور نصیحت کرنے والے کو سب سے زیادہ صبر میں سے حصہ لینا چاہیے. یہ مضمون بھی میں نے اسی آیت سے سیکھا, اسی آیت کریمہ سے سیکھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمایا کہ وہ حضرت عظیم رکھنے والا انسان ہے, تو پہلے صابرین کا ذکر کر دیا تھا. اس میں ایک بہت گہرا راز ہے, وہ یہ کہ یہ صابر بنانے والا جس نے اپنے ساتھیوں کو ایسا صابر بنا دیا کہ خدا بڑے پیار سے ان کا ذکر کر رہا ہے, اندازہ کرو کہ وہ خود کتنے بڑے صبر والا ہوگا. اور واقعہ یہ ہے کہ جو خود صبر والا ہو وہ ہی دوسرے کو صابر بنا سکتا ہے, اور جس میں آپ صبر نہ ہو کسی کو صبر نہیں, کسی کی تکلیف میں نہیں کر سکتا. تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا اندازہ کرو کتنا بڑا حصہ پایا ہوگا, کہ الا الذین آمنوا, جتنے ایمان والے تم صابر دیکھ رہے ہو یہ محمد مصطفیٰ کی کوششوں کا پھل ہے, انہیں کے اخلاق کی خیرات ہیں کہ یہ اتنے صبر کرنے والے پیدا ہوئے ہیں. تو تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے صبر کی خیرات حاصل کرو, پھر تم دیکھو گے تو تم میں عظیم تبدیلیاں پیدا کرنے کی طاقت عطا ہوگی, اور تم واقعتا وہ کام کر دکھاؤ گے جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتے ہیں. بس فرانس ہو یا جرمنی ہو یا ہالینڈ ہو یا دنیا کے کوئی اور ملک, ہر ملک محمد مصطفیٰ کا ملک ہے, کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. ہر ملک کی جماعت کا اولین فرض ہے کہ اپنے ملک کے باشندوں کو, جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک کا نمک کھاتے ہیں, جس ملک کا پانی پیتے ہیں, اس کے باشندوں کی طرف بھرپور توجہ کریں, اور ان میں سے لیڈر سے خاص لوگ چنیں, خواہ وہ دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہوں. اگر وہ ہمت اور صبر اور اخلاق محمدی کے ساتھ ان کو تبدیل کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہی دشمنوں میں سے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان نشاور کرنے والے دوست پیدا ہو جائیں گے. خدا کرے کہ فرانس کی جماعت کو فرانس میں اور دیگر ملکوں میں جماعتوں کو دیگر ملکوں میں یہ روحانی انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا ہو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.